खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले सराहने वाले ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे मजे में होंगे और ठीक रहना भी चाहिए यार क्योंकि खुद ठीक रहना जो है वो अपनी ही जिम्मेदारी है बाई द एंड ऑफ द डे अगर आप ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभी तक जिंदगी के उस मुहार पे खड़े नहीं हैं जहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि जहाँ पर आप का ठीक होना ना होना आपकी अपनी जिम्मेदारी है लोग आपको सताते हैं रुलाते हैं जलाते हैं खपाते हैं पर वो क्या है कि आपने लोगों को इतना एम्पावर कर दिया है अपनी जात से अपनी जात के रिएक्शन दे दे के लोगों लोगों के पास आपने वो पावर्स दे दिए हैं कि लोग आपका बेड़ा गरक आराम से कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है और अगर आप समझते हैं कि आप उस जिंदगी के उस मकाम पर हैं जहाँ पर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो इसका मतलब है कि आपने अपना खाना खराब खुद किया हुआ है सो बाय द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल इंसान रोज बरोज थोड़ी बहुत कोशिश ही कर सकता है और आपको बताते चलें कि 107.4 पर फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो समय FM की फ्रीक्वेंसी है कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर भागलपुर सियालकोट और इसके गिर्द व निवाह में जहाँ जहाँ पर भी आप ये फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं सो डू कैच अस मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ उसके साथ साथ 44 पर भेजते हैं आप अपने पैगाम की बरसात और आज तो वैसे भी इस्लामाबाद में बरसात ही बरसात है यार इतनी खूबसूरत बारिश इतना खूबसूरत मौसम इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि बस ना पूछिए अनएक्सप्लेनेबली ब्यूटिफुल अनएक्सप्लेनेबली ठंड इतनी मजे की है सांस लें तो आपको ऐसे ताजगी का एहसास हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे वाकई यार ये है वो खुदा की कुदरत जो आपको जिसके लिए आप किसी के मोहताज नहीं है आई डोंट नो व्हाई डू पीपल फील सैड इन द रेन या देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ जब बारिश होती थी और मैं भी सैड हो जाती थी बट देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ जब बचपन में बारिश होती थी तो मुझे याद है कि जब सारे काम वाम छोड़कर हम सिर्फ बारिश को एंजॉय करते थे उस वक्त हमें कोई नहीं चाहिए होता था उस बारिश को एंजॉय करने के लिए पता नहीं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कहने को तो हम बड़े हो रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुझे लगता है हम ज्यादा अपाहिज होते जा रहे हैं हम ज्यादा पैरालाइज होते जा रहे हैं हम ज्यादा पैरासाइट होते जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने इमोशंस के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है और हम हर बात के लिए उदास होने का एक रीजन बना लेते हैं कि यार मैं इसलिए उदास हूँ ना अभी माँ बाप नहीं है तो जनाब माँ बाप को याद करके उदासी का बहाना चढ़ा लिया मियाँ दूर है तो मियाँ की उदासी का बहाना करके सर पे चढ़ा लिया बच्चे दूर है तो बच्चों की उदासी का बहाना बच्चों की दूरी को वजह बनाकर अपने आप को उदास करने का बहाना बना लिया मतलब हमारे पास अपने आप को उदास रखने की हमारे अपने अपना बेड़ा गर्क करते रहने की हजार ही वजूहात हमें मिलती जाती हैं और हम उस वजूहात में खुशी खुशी अपने आप को डुबोते चले जाते हैं कि ओ यस मेरे ऊपर तो जिंदगी ने बहुत आजमाइशें ढा दी हैं और मेरे ऊपर तो जिंदगी ने बहुत जुल्म कर दिए हैं मेरे साथ तो जमाने ने ये कर दिया है तो यू नो आई डिजर्व दिस सैडनेस आई डिजर्व टू बी फटा हाल खराब हाल मैं डिजर्व करता हूँ असल में सच्चाई ये नहीं है सच्चाई कुछ और कहती है सच्चाई कहती है भाई साहब जिंदगी कुछ भी हो जाए ये जो सूरज बाबा है ना ये रोज सुबह उसी ताबनाक तरीके से जगमगाते हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं मुंह क्या है ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर कि बेबी इट्स अनदर डे अगर आपका हाल ठीक नहीं है उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर फॉल्ट है वो क्या है कि हम सारी कोशिशें जमाने को बदलने में लगा देते हैं और खुद जब बदलने की बारी आती है तो ठेंगा तो क्या है कि वक्त भी हमें ऐसी ठेंगा दिखाता और आगे बढ़ जाता इट्स एज सिंपल तो जनाब जब मोहब्बत में थे तो लगा मोहब्बत सबसे बड़ी बात है जब शादी की उम्र हुई तो लगा यार शादी ही सबसे बड़ी बात है जब करियर बनाने की बात आई तो लगा यार मकसद ही सबसे बड़ी करियर ही सबसे बड़ी बात जब इश्क तारी हुआ तो लगा यार इश्क से बड़ी तो कोई बात ही नहीं फिर जब मकसद मिला तो लगा यार मकसद से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं लेकिन इन सारी बड़ी चीज़ों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि इंसान खुद बहुत छोटा हो जाता असल असल बात और असल 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 सारा मुद्दा तो इंसान के इंसान होने में है तो मुझे लगा यार इंसानियत ही सबसे बड़ी शायद अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो कितना अच्छा शौहर है वो कितना अच्छा बाप है वो कितना अच्छा बेटा है वो कितना अच्छा भाई है वो कितनी अच्छी बीवी है वो कितनी अच्छी माँ है वो कितनी भी अच्छी कुछ भी है लेकिन अगर वो अच्छी इंसान नहीं अगर वो अच्छा इंसान नहीं तो वो कुछ भी कितना बड़ा हो जाए उसके बड़ा होने की कोई दलील नहीं है क्योंकि इंसान सबसे बड़ा होता है जब फैसला बारी तुम्हारे अपनों की आती है रिश्तेदारों की आती है तो तुम बहुत ग्रेटनेस दिखा सकते हो दिखाते हो और दिखाता है इंसान लेकिन जब बारी एक आम इंसान की आती है जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता तब तुम अपना अपनी जात के उस निचले दर्जे पे जाकर क्रीपर्स की तरह, कीड़े मकौड़ों की तरह, जानवरों की तरह फैसले करते हो. और इसकी आम जिंदा मिसालें हमें सड़कों पर ड्राइव करके मिल जाती हैं कि कैसे इंसान को रोनता हुआ आगे चला जा रहा है. जब इंसान किसी पब्लिक ऑफिस में जाता है, किसी बैंक में जाता है, किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, तो वहां पता चलता है यार इंसान कितना छोटा और चीजें कितनी अहम है, पैसा कितना अहम है, पोजीशन कितनी अहम है. जब इंसान रिश्तों में बढ़ता है तो पता चलता है यार रिश्ते कितने अहम है और इंसान कितना छोटा हो जाता है. तो मुझे लगता है जिंदगी में इंसान होना सबसे बड़ी बात है, इंसानियत सबसे बड़ी बात है. हमारा इस्लाम, हमारा रिलीजन, जिसको हम अपने आप को मुसलमान होने के दावे करते हैं और रोजाना कोई ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि हम किसी को अच्छी बात तबलीग जबरदस्ती किसी के जहन में ठूस सकें कि तुम कैसे मुसलमान हो यार, तुम ये नहीं करते. तो जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है, और हमारा इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है, अगर हमने इंसानियत का दर्स नहीं सीखा है, अगर हमने किसी को तबलीग करनी है और किसी को बहुत अच्छी बात बतानी है और किसी की सलाह करनी है, तो मसला यह है कि हम अपना इंसान होना भूल जाते हैं और हमें यह याद रह जाता है कि मैं अच्छा हूं और ये बुरा है. और ऐसा नहीं कि एक आद का जिक्र करें, ये माजरा सभी के साथ है. हम अक्सर इंसान होना भूल जाते हैं, बाकी हमें सब याद रह जाता है. कुर्सी पे बैठकर हम ये याद रखते हैं कि हम बड़े लाड साहब हैं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं इस कुर्सी का मालिक हूं, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि मैं इस कुर्सी पर बैठा सिर्फ एक इंसान हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं. इंसान को अगर खाक की तरह पढ़ोगे तो खाक की तो कोई औकात नहीं है, लेकिन खाक की ताकत की बात करोगे तो खाक में बड़ी ताकत होती है. इंसान को अगर रूह की तरह पढ़ोगे तो रूह तो परवाज का नाम है, रूह तो खुदा से जुड़ने का नाम. इंसान को अगर दिल की तरह देखोगे तो दिल से अच्छी तो कोई शय ही नहीं है दुनिया में, हुस्न भी मान पड़ जाता है दिल के आगे. और अगर इंसान को दिमाग के चक्रव्यूह में पढ़ते हो तो इंसानी दिमाग से बेहतरीन कोई टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में ना कभी ईजाद होगी और ना अभी तक ईजाद हुई. जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, जिसको हम फोन कहते हैं, या जो भी कहते हैं, इंसानी ह्यूमन माइंड का ही प्रोडक्ट है. इट्स नॉट बियॉन्ड ह्यूमन माइंड. सो जितनी भी टेक्नोलॉजी और जितनी भी सैटेलाइट और जितनी भी हम तरक्की कर लेंगे, ये रहेगी इंसानी दिमाग के कंट्रोल में. इंसानी दिमाग से आगे नहीं बढ़ सकती. सो इंसान चाहे दिमाग से, चाहे दिल से, चाहे रूह से, चाहे जिस्म से, हर तरह से इंसान बहुत बड़ी चीज है. इंसान बहुत इज्जत के काबिल है. अब वो चाहे मर्द और औरत का जेंडर इंसानियत में नहीं आता, ये भी बड़ी मजे की बात है कि इंसान इंसान होता है, इंसान का कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मर्द होता है ना वो औरत होती है. वो मर्द भी है, वो औरत भी है, वो बच्चा भी है, वो बूढ़ा भी है, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, उसकी कोई भी जात हो सकती है, उसकी 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 कोई भी नस्ल हो सकती है, उसका कोई भी रंग हो सकता है, वो किसी भी रंग में और किसी भी रूप में आपको आ जाता है. इंसान होने की पहचान यही है ना यार, आपको जिस्म लगा हुआ है, आपके दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक इंसान होने की साख्त है, पहचान है. जैसे हम जानवर देखते हैं तो हम फौरन से पहचान जाते हैं ये कुत्ता है. वैसे कुछ इंसानों की हरकतें भी ऐसी होती हैं. इंसान को देखते हम पहचान जाते हैं ये तो इंसान है. ओके, सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस. I'm moving on to my next song, and my next song, let me check my playlist. Okay, Ali Azmat, aur aage 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 Ali Azmat, phir se Ali Azmat. Okay, aage aage aage. Hai naya naya kuch, kya naya naya hai? Naya pan to sirf apni zaat se aata hai. Bahar 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 wohi sab purana hai. Bahar wohi barish hai, wohi sadak hai, wohi gaadi hai, wohi log hai, wohi baatein hai, wohi mudde hai, wohi masail hai, wohi jhamail hai. Aur chalein ji phir aapko गाना सुनाते हैं, इसको आप गाना कह सकते. क्या है ना, हर गाना गाना नहीं होता. जिस तरह हर इंसान इंसान तो है, पर हर इंसान इंसान नहीं होता जब तक उसको इंसान होने की मेराज समझ ना आ सके. तो इसी तरह हर गाना गाना नहीं होता जब तक वो गाने के मयार पे पूरा ना उतरे, जब तक वो आपकी रूह को रूह अफजा ना कर दे, वो गाना गाना नहीं होता मेरी नजर में. गाना सिर्फ वो होता है जो आपकी रूह को मुअत्तर कर देता है. सो दिस सॉन्ग इज क्वाइट अ क्लोज वन टू मी. और आजकल ये मेरे दिल के बहुत, रूह के बहुत करीब चल रहा है. ये मेरी रूह को आजकल बहुत फीड कर रहा है, और इस वजह से भी किसमें मेरा नाम भी आता है. किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां. मतलब लेवल है बॉस. अच्छा जी, आपको बताते चले, दिस सॉन्ग इज एन ओएसटी फ्रॉम जिंदगी तमाशा. सरमत कूसट की फिल्म थी, ये थी नहीं बल्कि है ये, जिस पर बैन लग चुका है और पता नहीं कोई भी अच्छा काम हो रहा हो ना उसको पर ताला लगा देती है ये दुनिया. पता नहीं क्या है, क्यों बैन लग गया और क्या ऐसा तजाद था और क्या ऐसी फिलॉसफी क्लैश हो रहा था किसका के इस खूबसूरत फिल्म के ऊपर बैन लग गया. आई डोंट नो व्हाई, बट जिंदगी तमाशा सरमत कूसट की फिल्म सिक मित्रा दी, और ये पीर मेहर अली शाह का कलाम है. पीर मेहर अली शाह से कुछ उंस थोड़ा मेरा ज्यादा है, वो इसीलिए कि इस्लामाबाद में पीर मेहर अली शाह का ये मजार है और जहां पर हम हैं ये जो स्लो जैम्स का शो होता है, मतलब ये जहां पर हमारा स्टूडियो है उसके पास में ही पीर मेहर अली शाह का घर है. वो घर कह रही हूँ, उसके पास में ही पीर मेहर अली शाह का मज़ार है. और मुझे भी इत्तफाक हुआ जब मैं इस्लामाबाद शुरू में आई तो मुझे ऐसा लगा मेरी भी हाजिरी, पांच पीर हैं यहाँ के इस्लामाबाद के, पंच पीर जिसको कहते हैं, पंच पीर रॉक्स तो खैर वहां पर है जहां पर पांच पीरों ने, इस्लामाबाद में चार पीर ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को कहते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पर बड़े अपने. तो इस्लामाबाद की जो एनर्जी है वो इसलिए वो नाम भी उसका इस्लामाबाद. देखें जिंदगी कहाँ से कहाँ दौड़ती है, और जब इस्लामाबाद का नाम रखा जा रहा था तो उसका नाम स्पेशली इस्लामाबाद रखा क्योंकि यहाँ पर जो एक तो पीर मेहर अली शाह का मज़ार है, दूसरा बड़ी इमाम सरकार का मज़ार है, शाला दत्ता का मज़ार है, और इधर पास में एक और बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार है. तो कहते हैं कि इस्लामाबाद इज सेव अंडर दीज ऑल ओलियास, और पीर मेहर अली शाह के से उन्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिस जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से पीर मेहर अली शाह का. और शुरू से जब से मैं इस्लामाबाद आई थी तो मुझे पहला जो घर मिला था वो बिल्कुल पीर मेहर अली शाह के गुम्बद, जो उनका मज़ार है उसके जो मस्जिद का गुम्बद है और मीनार है बिल्कुल उसके सामने मेरा घर था, और वहाँ से नज़र आती थी और उस मस्जिद की आवाज़ अजान की आवाज़ मेरे घर आती थी. तो मैं हमेशा अक्सर जब भी वो अजान सुबह सुबह होती थी और रात में होती थी और मगरिब के टाइम पे होती थी तो वो अजान अपनी तरफ खींचती थी. तो मुझे बड़ा इश्तियाक सा हुआ कि ये क्या है, ये कैसा कि ये कैसा वजद है अजान का, कि पहले कभी जिंदगी में अजान का ऐसा वजद महसूस नहीं हुआ, पर यहाँ से जब ये आवाज़ आती है तो ये महसूस होता है कि ये आवाज़ अपनी तरफ खींच रही है. तो पता चला कि ये पीर मेहर अली शाह का मज़ार है और यहाँ पर जो है वो अक्सर जुमेरात को कवाली होती है और वहाँ पर समा बनता है. हर कवाली में जाने का इत्तफाक तो नहीं हुआ. कहते हैं कि पीर मेहर अली शाह की जहाँ पर कब्र है उनके मज़ार में, उसको उस एरिया को, वैसे तो मज़ार बहुत बड़ा है और उनके तमाम जो हम असर और जो उनके गद्दी नशीन और सजादा नशीन और जो उनके थे वो भी वहीं पर हैं, दफन है. कहते हैं कि जहाँ पर पीर मेहर अली शाह की कब्र दफन है और उस जगह को, एक काफी अच्छे स्पेशियस कोर्टयार्ड है, उस जगह को इश्काबाद कहते हैं. और पीर मेहर अली शाह की जो रियाजत थी वो सारी इश्क के हवाले से थी, और वो इश्क नहीं कि उन्होंने किसी इंसान से इश्क किया हो या वो अल्लाह ताला से. देखिए इश्क का मतलब है कि अपनी जात को फना कर लेना, वो किसी भी शय में हो सकता है. अल्लाह की जात में फना कर लेना, नबी की जात में फना कर लेना, नबी के इश्क में मुबतला हो जाना, किसी लड़की के इश्क में मुबतला हो जाना, या अपनी जात की पहचान के इश्क में मुबतला हो जाना, या अपने मकसद की हुसूली के लिए. तो पीर मेहर अली शाह के लिए कहते हैं लोग कि पीर मेहर अली शाह जहां दफन है वहां पर उसको उस जगह को इश्काबाद कहते हैं. और इश्काबाद इसलिए कहते हैं कि पीर मेहर अली शाह की जो रियाजत थी सारी, वो सारी उसमें थी, और इस तरह थी कि वो जो मेराज का वाकया हुआ था और मेराज में अल्लाह ने नबी पाक से जो मुलाकात की थी, वो मुलाकात के कुछ क्या कहते हैं ना, वो तन्हाई की मुलाकात थी आज से पहले और इसके बाद भी. अभी तो कोई शख्स अल्लाह से अकेले में इस तरह मेराज का लम्हा वो नसीब नहीं हुआ है, पता नहीं किसी को होगा या नहीं होगा, लेकिन पीर मेहर अली शाह की सारी रियाजत उस एक लम्हे के पीछे थी कि वो ये जानना चाहते थे कि वो जो तन्हाई का एक लम्हा एक इंसान को अल्लाह से मिला होगा, उस तन्हाई के लम्हे में उस इंसान ने अल्लाह से क्या बात की होगी. तो वो जो इश्क था सारा उनका, उनकी सारी रियाजत उस एक लम्हे के पीछे थी कि वो जो एक मेराज का लम्हा था. तो पीर मेहर अली शाह जो है वो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और लोग बड़ा मानते हैं उनको आज भी, पहले मैं समझती थी कि यार ये जितने भी पीर फकीर होते हैं जिनके भी मजार हैं, ये मजारों पे जाना ठीक नहीं है, और ये औरतों का और सजदे करना और ये करना वो करना, ठीक है बिदतें हैं, हम किसी को भी वो अल्लाह और रसूल के ताजीम के मुताबिक नहीं दे सकते, पर ये जो नेक लोग होते हैं ना अल्लाह के वली जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां कुर्बान की होती, अगर इतने सालों बाद भी इनका नाम लिया जा रहा है, अगर इतने सालों के बाद भी इनकी जात से इनकी शख्सियत से किसी को फैज मिल रहा है, इनकी दुआएं इनके तवस्सुत से पूरी हो रही हैं, किसी ने अपना अगर यकीन बांध ही लिया है वलीउल्लाह से या औलिया से, और अगर उनको उनकी मुरादें मिल रही हैं उनके तवस्सुत से, तो ये तो रब जाने और वो जाने ना, इतने अरसे के बाद और जमाने गुजर जाने के बाद भी अगर एक इंसान की ताजीम का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा और अब तक ये वैसे का वैसा ही चल रहा है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दिल मानता है ना कि यार कोई तो बात होगी, ऐसे ही नहीं बंदा बेचैनी होती है, किसी माँ से उसका बच्चा छीन लो तो उसको कितनी बेचैनी होती है, जिस तरह वो हाजरा की बेचैनी जो सफा और मरवा के गिर्द आप चक्कर काटते हैं और जो पहाड़ियों के दरमियान आप सही करते हैं, तो वो भी एक औरत की रिवायत है ना, एक औरत की अपने बच्चे के लिए तड़प थी, एक औरत की अपने बच्चे की प्यास के लिए जो खुदा के लिए खुदा के सामने उसकी तड़प थी और पानी ढूंढने, वो एक छोटी सी रस्म हो, वो एक छोटी सी रिवायत आज तक जिंदा है। सो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला को अपने इंसान की अपने बंदे की कौन सी ऐसी बात कौन सी ऐसी चीज पसंद आ जाए, और वो जमजम आज तक है और वो रहेगा और वो ता हयात रहेगा और वो और जिंदगी दुनिया जब तक है तब तक वो रहेगा। तो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की तन्हाई में गुजारा हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा लम्हा या उसकी कोई भी तड़प या कोई भी ऐसी बात पता नहीं अल्लाह को कब पसंद आ जाए, कैसे पसंद आ जाए और अल्लाह को क्या पसंद आ जाए, तो यू नेवर नो कि वो एक रस्म चल जाती है, रिवायत बन जाती है, जमाना उसे याद रखता है, चश्मे फूट जाते हैं यार। पंजा साहब में गई वहां पर, हाँ पंजा साहब चौथे लेकिन खैर वो हसन अब्दाल में, पंजा साहब जो है वो गुरु नानक सिलसिले के हैं और सिखिज्म का गुरुद्वारा था, कहते हैं कि वहां पंजा साहब ने पंजा साहब की खासियत ये थी कि वो जिस पत्थर पे हाथ मारते थे उसमें से चश्मा फूट जाता था, और इसका आंखों देखा सबूत आज भी उस पंजा साहब में वो पत्थर है जहां से वो चश्मा फूट रहा है, एंड नो वन नोज कि ये पानी कहां से आ रहा है, और वो सदियों से वो पानी आ रहा है और हौज पे हौज लोग वहां शफा भी पा रहे हैं, वहां इबादतें भी कर रहे हैं, लोग वहां तफरियां भी कर रहे हैं, हर किसी के अपने ताजीम के लेवल होते हैं ना, कोई मानता है कोई नहीं मानता। पर मुझे हमेशा एक बात में हैरत होती थी, मैं भी आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा कहती थी नहीं यार पीरों को नहीं मानना चाहिए, औलिया को नहीं मानना चाहिए, इनके तवस्सुत से नहीं मांगना चाहिए, बट जब मुझे वहां जाने का शर्फ हासिल हुआ, शर्फ ही है वो क्या कहते हैं, वो हाजिरियां ही होती हैं, जो बुलाते हैं वो ही जाते हैं, तो जब मैं वहां गई मैंने लोगों को देखा और तो मुझे एक 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 बात ने जरूर दिल में ध्यान पकड़ा कि यार हम भी तो रोज कोशिश करते हैं, रोज हमारी यही कोशिश होती है सोशल मीडिया पे अपनी धाक बिठा लें, हम ऐसा अच्छा ड्रामा कर लें कि लोगों को याद रह जाए, हम कोई ऐसा काम कर लें जो बस लोग सदियों तक उसे याद रखें और हमारा नाम तारीख में रह जाए और लोग हमें अच्छे अच्छे लफ्जों में याद। तो ये लोग तो हैं ही वो खुदा के बंदे ना, अल्लाह के बंदे, इन्होंने जिंदगी में यू डोंट नो व्हाट दे हैव बीन थ्रू, पर जितने भी वलीउल्लाह की जिंदगी हम देखते हैं दे अबैंडनड देयर लाइफ और समहाउ उनको अबैंडन करनी पड़ी है, दे लिव्ड देयर लाइफ इन रिट्रीट्स पहाड़ों में जंगलों में बयाबानों में जाकर उन्होंने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को इस्तवार किया और वहीं से तन्हाइयों से वो करते 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 सूफी बन जाते हैं, वली बन जाते हैं, वलीउल्लाह। सूफी होने के लिए आपको जंगलों पहाड़ों बयाबानों में रिट्रीट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट फॉर द रिट्रीट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रियाजत है जिसको सिर्फ आप खुदा के लिए, इस तरह में तकाफ बांधते हैं 10 दिन का, तो उसी तरह रिट्रीट भी एक रियाजत का नाम है जिसमें आप खुदा के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि यार आपका हर लम्हा इबादत हो जाता है और आप नमाज में होते हैं अल्लाह के साथ, हर वक्त कलाम में होते हैं। तो मुझे हमेशा जब मैं वहां गई तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार कुछ तो है, ऐसा ही नहीं कोई इतने सदियों के बाद भी और इतने सालों के बाद भी अगर लोग इनसे अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं, पा रहे हैं, अपनी अकीदत दिखा रहे हैं, और लोगों को आज भी वहां से सुकून मिलता है, नो डाउट। आप किसी भी मजार पे चले जाएं, बरी इमाम सरकार पे चले जाएं, वल्ला आलम लोग चिराग जलाते हैं, उनको मिलता है, दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन सुकून है, यकीन जानिए सुकून है। पीर मेहर अली शाह के मजार पे गई, परी इमाम सरकार पे गई, गुरु नानक के गुरुद्वारे पे गई, सुकून है, नो डाउट आपको फील होता है कि यार, बुद्धा के स्टूपास पे गई तो नो डाउट आपको फील होता है कि यार यहाँ पर सुकून है, ये लोग हैं, बड़े लोग थे, मानो ना मानो, क्योंकि इतने जमाने गुजर गए ना, जमानों के बाद भी अगर किसी को याद रखा जा रहा है, किसी की एक रिवायत को जिंदा रखा हुआ है खुदा ने, और अगर किसी की इज्जत और ताजीम इतने जमानों के बाद भी आज भी लोग इज्जत से नाम लेते हैं और उनके तवस्सुत से लोग सुकून पाते हैं, दुआएं भर लाते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, तो यार कुछ तो होगा। हम माने ना माने, वो क्या है ना कि हमारे ना मानने से चांद चांद नहीं रहता, हम कह दें ये रात नहीं दिन है, तो हमारे कह देने से कुछ नहीं होता ना, जो चीज है वो सच महसूस होता है। तो जब आपको कभी भी कोई ऐसा सच महसूस हो कि जिस पर आपका दिल दिमाग ना मानता हो कि नहीं यार ये तो बेवकूफ है, नहीं यार ये, क्योंकि दिमाग हमेशा लॉजिक के पीछे चलता है, लेकिन ये जो दिल है, ये दिल सच का आईनादार होता है, ये आपको बता देता है, आपको आपके दिल में कहीं ना कहीं एक ख्याल आ जाता है कि नहीं यार कहीं कुछ है, कुछ है। सो यस, वाह जी वाह, बड़ी फरमाइशें चल रही हैं, गाना सुना दें, कैमरे के करीब आ जाएं, मेरा नाम ले लें, मतलब क्या हो रहा है, ये फरमाइशें नहीं खत्म होती ना इस टाइम पे लोगों की, सारा टाइम अपनी करते 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 फिर भी अपनी मैं नहीं मरती। अच्छा जी, खान साहब सुन लें जी, और वो कहते हैं ना कि खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, हम इतना भी ना समझे अक्ल खोई दिल गवा बैठे, हम इतना भी ना समझे अक्ल खोई दिल गवा बैठे, ये हुस्नो इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है, जमीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है, जमीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है, नहीं मालूम मेरे दिल की वीरानी कहां तक है, और नियाजो रियाज की रुदाद हुस्नो इश्क का किस्सा, नियाजो रास की रुदाद हुस्नो इश्क का किस्सा, ये जो कुछ भी है सब उनकी हमारी दास्तां तक है, ख्याल यार ने तो आते ही गुम कर दिया मुझको, ख्याल यार ने तो आते ही गुम कर दिया मुझको, यही है इब्तिदा तो इंतहा उसकी कहां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है, सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में, सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में, ये बेरंगी बयाबानी बेदम रंगी बयां तक।